اب دوسری ہدایت، پہلی کا تعلق کیا ہے؟ کہ تمہارا اپنا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. کیسے ہو؟ نماز اور ذکر سے. اب دوسرا حکم آیت 46 میں، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو. کب؟ لکھ لیں، ان کو دعوت دیتے ہوئے، ان کو دین کی بات بتاتے ہوئے. ہاں مگر اگر نوبت آئے، اِلَّا بِالَّتِ هِيَ أَحْسَن، مگر بہترین طریقے سے. یعنی جب تم کسی کو اسلام کی دعوت دو تو تمہاری گفتگو میں توہین کا انداز نہ ہو کہ ان کی عصبیت جاہلیہ جو ہے وہ بھڑک اٹھے. آسان درجے پہ بات کرو، ٹانٹنگ سٹائل نہ ہو، ٹیزنگ سٹائل نہ ہو، ان کو دھمکیاں نہ دو، اچھے طریقے سے بات کرو. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ناانصافی پر تلا ہے. اب یہ ناانصاف لوگ کون ہیں؟ اس استثناء کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک، اس سے مراد وہ ہے کہ وہ لوگ جو غیر منصفانہ طرز عمل دکھائیں، یعنی وہ تم پہ زیادتی کریں صرف اس لیے کہ تم مسلمان ہو، ٹارچر کریں، تم پہ زیادتی کریں، تو ایسے لوگوں سے تو بحث ہی نہ کرو کیونکہ وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. دوسرا کیا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف بات کرتے ہو کہ زبان کھولیں، تو پھر جب تم ان سے بات کرو تو تم بھی نسبتاً رویہ سختی کا اختیار کر سکتے ہو. پتہ کیا چلا؟ کہ دین کی بات کرتے وقت دیکھو کہ مخاطب کیسا ہے، پھر ان سے بات کرو اچھے طریقے سے. لیکن بحث کی تو اسلام میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. دیکھیے، یہ جو ہم بحثیں کرتے ہیں نا، غیر مسلموں سے تو چھوڑ دیں، مسلم مسلموں کے ساتھ جو بحثیں کرتے پھرتے ہیں، اللہ کی بنا. کسی کا ایک جملہ بہت اچھا لگا، آپ نے نام سنا ہوگا، چلے گئے دنیا سے، غلام مرتضیٰ صاحب تھے غالباً، تو ان کا ایک کال کہتے ہیں کہ جب تم کسی سے بحث کرتے ہو نا، تو تم اس کے دل کے دروازے کو لاک کر دیتے ہو. اب وہ قائل تو ہو جائے گا اندر سے، اظہار نہیں کرے گا، تو بحث نہ کرو. بحثوں کے ذریعے دین کبھی نہیں پھیلا. اللہ کہتے ہیں لا تجادلوا، ڈونٹ فائٹ. اور یہاں جدال سے مراد کون سا جھگڑا؟ جو دلائل کے ساتھ دیا جائے، ہاتھا پائی تک نوبت نہ جائے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان سے کہیے ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ لوگوں پر نازل کیا گیا. کیا مطلب؟ اپنے دین کا اظہار کر دو، بی فارم. یہ نہیں کہ جھگڑا نہیں کرنا اب اس کے اندر، کہ ان کے ہاتھوں میں تم موم کی ناک بن جاؤ. نہیں بھائی، تم اپنی بات مانو، ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم پہ نازل کیا گیا. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکا چکے ہیں. یہ کیا بات سمجھ آئی کہ جب دوسرا بندہ آپ کی بات نہ مانے تو پھر بحث میں پڑھنے کی بجائے عقل مند لوگ کہیں کہ بات کو سمیٹتے ہیں. یہ سننے کے موڈ میں نہیں، میں کیوں سناؤں؟ دیکھیے، آپ تو اپنی ساری گولیاں ہی ضائع کر دیں گے. جو لوگ اپنے سارے دلائل موقع بے موقع استعمال کر چکے ہوتے ہیں نا، آپ سمجھے ان کا حال اس فوجی کی طرح ہے کہ جو لڑائی کے آغاز میں ہی سارے کارتوس چلا چکا. نہیں، سنیے، سنو، اوکے، صبر، برداشت کریں. دیکھیے، آپ اس کو اپنے اوپر لیں گے نا تو پھر ہی بات سمجھ آتی ہے، مکہ مدینہ والوں پہ سمجھ کوئی نہیں آتی. آپ بیٹھے ہیں اور ایک دم ایک بندہ آتا ہے اور آپ کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، کسی بھی رنگ میں کہتا ہے، کسی بھی انداز میں کرتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کو کیا ہوا، یہ اس نے کیا بات چھیڑ دی؟ نہ آپ ذہنی طور پہ تیار، نہ کوئی بات کا تک، نہ کوئی بات، صرف اس کے اپنے اندر کا گرج اور غصہ ہے جو وہ کھول رہا ہے، یا پھر ایک ڈسپلے دینا چاہ رہا ہے، وہ دے رہا ہے. اب ایسے وقت میں آپ اگر آگے سے کیا کہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے آپ کے بعد، یہ آپ نے کیا بات چھیڑ دی، کیا ہوا ہے، تو بات کتنی ہی لمبی کھینچے. ایسے وقت میں پی جائیں. اوکے اوکے، اور کچھ کہہ چکے، چلیں آگے چلتے. یہ انداز سکھائے جا رہے ادھر، کل وتھ کائنڈنس. جب کوئی بحث کے موڈ میں اگر آپ اس وقت خاموش رہ گئے نا، تو آپ نے 50% اس کو کانکر کر لیا. کسی بھی رشتے میں آپ اس کو ازما کے عملی طور پہ دیکھ لیں. اگلا کہتے ہیں اچھا، اس وقت اس کو لگ رہا تھا میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اگر آپ بھی آگے سے ذرا سا بھی بولیں گے، وہ کہے گا، وہ بھی آگے سے جواب دے رہے تھے، تو بحث جو جھگڑے میں بدلتی ہے. خاموش بھائی، بولو، تم بھی کچھ بولو. ان باتوں کے تو جواب میں میرے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، میں کیا بولوں؟ خاموش آپ بولیں. دیکھیے گا ان کو آپ کی خاموشی پہ غصہ آنے لگ جائے گا، اور جب اس طرح سے آپ بات کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا اثر زیادہ ہوگا. وہ بول بال کے چپ ہوگا نا، تو جب آگے سے کوئی بولا ہی نہیں، तो अंदर से उसको मलामत होगी, शर्म नहीं आती, क्या जरूरत थी बोलने की, सबरी कर लेती, क्या हो गया क्या हो गया, तो क्या बड़ी बात होगी। लेकिन वो चूंकि वो अंदर का मच निकल चुका होता है ना, तो बंदा फिर मुतमईन होता है। तो यहां अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तरीका सिखाया, जब लोग तुम्हें टेररिस्ट कहें, जब लोग तुम्हें तालिबान कहें, कुछ भी कहें, कुछ भी करें, एक दफा खामोशी से पीजो। देखिए इस्लाम का मिजाज जारहाना नहीं है, चढ़ाई करने वाला नहीं है। वरना तो मक्का में एक तो जुल्म ये थे ना, जब अबू जहल कर रहा था या उमैया कर रहा था, एक और खबरें वो छपती कि आज मुसलमानों के जवाब पे वहां और भी हो गया। एग्रेशन नहीं सिखाता इस्लाम कि तुम उनको दिखाओ तुमने हमारी मस्जिद जलाई, हम तुम्हारा मंदिर जला देते हैं। इस्लाम ये करता तो मक्का में तो घर घर और ज्यादा लड़ाइयां पड़ी होती। 13 साल खामोशी और उसके बाद आगे जाना। अब सवाल पैदा होता है कि हमें अमूमन बहस मुबादले का मौका कब मिलता है, जब हम नए नए दीन पे आते हैं या किसी ऐसी जगह हम जाते हैं कि जहां हम तो अपना दीन पेश कर रहे थे, अगला बंदा जो था वो दूसरी तरफ आता है। आप इसको समझिए, मिसाल है कि आप में से किसी ने फर्स्ट टाइम कुरान सीखा और उतलो माओ ही इलाही का जो बात हो गई इस पे अमल किया, अब आपके खानदान वाले आप पहली दफा उनके तक गई, हो सकते पाकिस्तान में रहते हो, आप कुरान पढ़ने से पहले जा चुकी थी, आप गई तो जहर आपके हाल उलिए में आपके रंग ढंग में उनको चेंज लगा। अब आपके जो रिश्तेदारों के, तुम्हें क्या हुआ, ये क्या हो गया, तो मुंह पे कोई चीज निकल आई है, ये डाटा क्यों बांधा हुआ है, ये बाई की क्या जरूरत है। अब ये जो बातें होती है ना, जिस वक्त के दूसरे लोग आपको पहले किसी और रंग रूप में देख चुके थे, वो जब इसमें देखते हैं ना, तो वो उनका दिल पता क्या होता है, वो छेड़े और आप छेड़े। अगर इस वक्त आप खामोश हो गए, पी जाए खामोशी से, तो यकीन करें ये जिदाल नहीं होगा। और किसी की बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि मक्की दौर में 13 साल तक खामोशी कहलवाई गई कुफ्व अइदिया को, फिर मदीना में आके कहा ठीक है उजीना लिल्लज़ीना, पढ़ चुके सुरह हज में। तो उन्होंने कहा कि जब शादी होती है ना, तो शुरू में जो लड़की होती है ना, ये मक्की दौर में होती है, अकेली है, नया माहौल है, सर्वाइव करना है, अभी लोगों का अपना आप दिखाना है, तो उसके लिए हुक्म किया कुफ्व अइदिया को, अभी हाथ बंद रखो। फिर एक दो बच्चा होता है जरा लड़की घर में पुरानी, हर बच्चे के साथ कदम भी जमते हैं, वक्त के साथ साथ इंसान अपनी जगह बनाता है, तो कहते हैं फिर उसके बाद बहस करो या जो मर्जी करो, फिर कोई माइंड नहीं करता। और आप में से जितनी सिस्टर्स मैरिड हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तो हमेशा याद रखिए बहस से बचना, जिंदगी का एक असूल बना ले, दीन का मामला है, दुनिया का मामला है, 100% दूसरे की गलती है, आप बहस ना करें, खामोश हो जाए, कहना अच्छा फिर बात करेंगे। अच्छा, और अल्लाह ने जो नमाजों के वक्त रखे, ये भी बहसों को खत्म करने का एक बेहतरीन नुस्खा है। नमाज का वक्त है, ओके नमाज पढ़ने बात करेंगे फिर, और बाद में वो वजू करते ही गुस्सा भी ठंडा हो चुका है, तब कहते छोड़ो मैं क्या बहस करूं। बात वहां से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम मुसलमानों को अच्छे अखलाक सिखा दे, और इससे एक इलाह को एक बनाकर उसके आगे झुक जाए, तो असल कहानी यही है। अब आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आयत 47 से, वह कजालिक इलेकल किताब, और ए नबी हमने इसी तरह आपकी तरफ ये किताब नाजिल की, कैसे जैसे पहले की थी दूसरों पे, फल लजीना तईना हुमुल किताब यूमेनू नबी, जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो भी इस पर ईमान लाएंगे। इशारा यहूद और नसारा की तरफ है कि वो यहूद और नसारा जिनके दिल में अपने बारे में कोई खुशफहमियां नहीं है, जो कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, वो जरूर पढ़ेंगे, जैसे सूरह कसस के 6 रुकू में हम पढ़ चुके कि हबशा से आने वाले लोग मुसलमान हो गए थे कुरान सुनकर, पहले ईसाई थे, तो उनको दोहरा अजर मिलेगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये किताब आप पर नहीं, आपसे पहलों पर भी नाजिल की गई, अब अगर वो लोग आपकी जुबान से सुनकर ईमान ले आते हैं तो मुबारक के लायक है, अल्लाह इनको और भी देगा। बमिन हाउलाई, और इनमें से, किन में से, हाउलाई के नीचे लिखे मुशरकीन मक्का, कहले किताब तो बहुत सारे मान जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हाउलाई इन मुशरकीन मक्का में से भी वो होंगे, मैं यूमिनु बिही, जो इस पर ईमान ला रहे हैं, इनके भी दिलों को हक टच कर रहा है, चाहे ये किसी पहले दीन पर नहीं थे, बेदीन थे, लेकिन कुरान का रंग दिखता है तो ये भी ईमान पे आएंगे। हाँ फिर कौन नहीं आता इसको सुनकर, वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून, और हमारी आयतों का इनकार नहीं करते सिवाय इन लोगों के, वो लोग जो कुफर पर अड़ गए। क्या समझ आया, कुरान का असर हर एक पे होता है सिवाय काफिरों पर, जिन्होंने वैक्स लगा रखा है अपने दिलों पर तासुब का, बड़ाई का, इसलिए आप इनके ना मानने की ज्यादा फिक्र ना करें। आज भी यही होता है, कितने दिल से लोग समझते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मान के आगे बढ़ता कौन है? आटे में नमक के बराबर। यही बात बता दी कि देखो ये सब लोग जो ऐसी बातें सुन सुना के आगे से फिर वैसे करते हैं, तो फिर आप इनसे ज्यादा बात ना करें। ये ऐसे लोग हैं कि इनके नसीब में हिदायत है ही नहीं है। आप देखिए कि यहां तक जितनी भी बातें हैं ना, आप इसको एक छोटी सी मिसाल से समझे, फिर हम आगे चलते हैं। मसलन आप देखिए कि एक शख्स बीमार है और लोग उसको उठा के डॉक्टर के पास ले आते हैं। अब डॉक्टर की नजर किस चीज पे होती है? कि ये सेहतमंद हो जाए, ऐसी है ना। अगर तो उसको एक गोली देने से सेहत मिल जाए तो वो गोली देगा, अगर उसको लगे कि इसको कोई कड़वा सिरप पिलाएंगे तो ठीक होगा तो वो देगा, और अगर उसको लगता है कि नहीं, जब तक इसकी उंगली काट कर ये जख्म इसका निकाल ना दे ये ठीक नहीं होगा, ये हकीम को पता होता है ना। इसी तरह दाई दीन, दीन की तरफ बुलाने वाले को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि जिस जख्म का इलाज सिर्फ एक गोली देने से हो सकता है उस पर उंगली ना काट दे। और अगर आते ही पहले दिन डॉक्टर के इसका पेट काटो ताकि मैं अंदर देखूं क्या है, तो कितने लोग उसके पास जाएंगे। असल नजर रखिए सेहत पर, शिफा याबी। अल्लाह इनको ईमान दे दे, हिदायत, और इसके लिए तड़प भी चाहिए। अब कठोर दिल या पैसे बनाने वाला हकीम या डॉक्टर होगा वो तो आके आपको 10 ऑपरेशन बता देगा, 10 किस्म के टेस्ट बता देगा, नुकसान के आपका उसका फायदा हो। और आप देखिए सूरह नहल आयत 125 पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है अब हम में से किसी को इस बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। स्टेप्स हैं, पहले मौइज़त पैदा करो, दिल में दर्द लाओ, तुम्हारी आवाज में दर्द हो, फिर उनसे बात करनी भी पड़े तो बड़े अच्छे तरीके से करो। सूरह हामीम सजदा में हम पढ़ेंगे आयत 34 आगे, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यतु, भलाई और बुराई यकसा नहीं, मुखालिफिन के हमलों का दिफा करो, इदफ बिल्लती अहसन, अच्छे तरीके से करो, फिर क्या होगा? फैजल्लज़ी बैनक व बैन अदावतन, वो जिसके और तुम्हारे बीच में दुश्मनी थी कैसे हो जाएंगे? कान्नहु वलीयुन हमीम, गोया कि वो गहरे दोस्त हैं, गर्म जोशी पैदा हो जाएगी। इसी तरह सूरत मोमिनून आयत 96 में हम पढ़ चुके, इत्फ बिल्लती अहसनु सय्यत नहनु अलमु बिमा यसिफून, और सूरत आराफ की आयत 199 से 200 में हम पढ़ चुके, हुजिल अफ वामुर बिल उर्फी वारिदनिल जाहिलीन वइम्मा यन्ज़गन्नक मिनश शैतानी नज़्ग़ुन फस्तईज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इन सारे बातों में अपने आप को ठीक तरह रखने वाला बनाए। हम दूसरों को कहने की बजाय फलां तो मानता ही नहीं, फलां को तो पता नहीं, उसका तो दिल में अल्लाह का कोई खौफ ही नहीं है, तो अल्लाह ताला हमें ये सबक सुना के अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की बात एकदम जो करते दिखते हैं वो कैसे था, अगली आयतें थोड़ी सी समझने वाली हैं, इसलिए पहले इसके तर्जमे के पर बात करेंगे। आयत 48, वमा कुंता, और नहीं था तू, तत्लू पढ़ता, मिन कबली ही, इससे पहले, किससे पहले? नबूवत के पहले या नबूवत मिलने से पहले। क्या? मिन कबली ही मिन किताबिन, कोई किताब, यानी ए नबी आप तो इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे। कब नहीं पढ़ते थे बताइए? नबूवत से पहले। क्यों नहीं पढ़ते थे? क्योंकि आप उम्मीद थे, अनलटर्ड थे, लिखना पढ़ना नहीं आता था। दूसरी बात, वला तखुत्तुहु, और नहीं आप लिखते थे। तखुत्तु का लफ्ज खत, उर्दू में कहते हैं खत लिखा, वही लफ्ज है ये भी, खा तोए तोए लिखने को कहते हैं, खतूत भी इसी से है, खतुवात भी इसी से है। नहीं आप लिखते थे भी यमीन ही का अपने दाएं हाथ से, यहां से पता चलता है कि दाएं हाथ से लिखना चाहिए। इजल, अगर ऐसा होता, यानी नबुवत के मिलने से पहले आप अगर लिखते भी तो पढ़ते भी, तो इजल लरताबल मुबतिलून, फिर तो वाकई शक में पड़ जाते ये झुठलाने वाले कि भाई ये पढ़ा लिखा शख्स है, इसने किताब लिख ली। मतलब से किसी भी पढ़े लिखे शख्स से आप तवक्को कर सकते हैं, किसी वक्त वो कह सकते हैं मैंने ये किताब लिखी है, ये मैंने स्पीच लिखी है, कर सकता है। अब एक अनपढ़ शख्स, आपके घर का ड्राइवर जो आपके हाथों में इतना छोटा बच्चा था, बड़ा हुआ फिर ड्राइविंग सीखी, ड्राइवर बन गया, अब वो एक दिन आके अगर आपको शेक्सपियर के नॉवल पढ़ पढ़ के सुनाए तो परेशान तो होंगे ना, बल्कि लिख के दे दे कि ये मैंने किताब लिखी है बाजी कैसी, तो हैरत होगी ना। तो यहां आपको वजह समझ आ रही है कि अल्लाह के नबी को उम्मीद रखने की हिकमत क्या थी, कि पैगाम में किसी की आमेजिश ना हो। जब भी कोई बंदा अच्छा काम करेगा ना, लोग जरूर उस्ताद का नाम पूछेंगे, और अल्लाह के नबी का कोई उस्ताद नहीं था। हद तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही लेकर आते थे ना, तो अल्लाह के नबी उनके पीछे नहीं पड़ते थे। तभी तो पहली वही में 3 बार उन्होंने कहा इकरा बिस्मी रब्बी का, और आपने कहा वमा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ नहीं सकता। तरीका क्या होता था कि जब जिब्राइल वही लेकर आते थे ना, वो पूरी बात कह के खामोश हो जाते थे, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी पढ़ते थे और अल्लाह के हुक्म से आपका सीना खुलता और आपको वो बात याद होती। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि अगर जिब्राइल के पीछे पीछे आप आयतें दोहराते तो जिब्राइल आपके उस्ताद बन जाते। तो उस्ताद का हक अदा करने के लिए अल्लाह के नबी के पास वक्त ना बचता नबूवत की जिम्मेदारियों को निभाने का, इतना हक था उस्ताद का। तो लिहाजा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपको किताब से पहले कुछ ना पढ़ना लिखाना सिखाया, ताकि प्योर नॉलेज, जब आप कहें इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, तो लोग वाकई माने कि ये इल्हामी इल्म है, ये एक्वायर्ड नॉलेज नहीं है। देखिए, एक होता है रिवील्ड नॉलेज और एक होता है एक्वायर्ड नॉलेज। रिवील्ड क्या है? जो नाजिल हुआ, और एक्वायर्ड क्या है? जो आपने सीखा। बस आप देखिए कि आप सब आज तक जितना भी पढ़े लिखे, उर्दू सीखी, इंग्लिश सीखी, मैथ सीखा, ये आपका एक्वायर्ड नॉलेज था ना। आपने अपने बच्चों को भी स्कूलों में भेजा, फिर सीख सीख के आए। अब इस वक्त आपको क्या मिल रहा है? आपको रिवील्ड नॉलेज मिल रहा है। अब ये दोनों इल्म जब मिल जाते हैं तो नूरो नला नूर, सोने भी सुहागा। इसीलिए जो लोग दुनियावी तौर पे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो कुरान को अगर समझ जाए तो वो चेंजेस दुनिया में ले आते हैं जो आम कम पढ़े लिखे लोग नहीं लेके आते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये अल्लाह के बंदे तुम पर शक क्यों करते हैं? ना आपको लिखना आता था ना पढ़ना आता था, तो फिर भी नहीं मान रहे। असल बात क्या है कि बल हुआ आया तुम बेनात, बल्कि ये तो रोशन आयते हैं। कहाँ? फी सुदूर अल्लज़ीना उतुल इल्मा, ये तो इन लोगों के सीनों में है जिनको इल्म दिया गया, यानी साबिका इल्हामी किताबों का इल्म रखने वाले लोग कुरान की आयात को खूब पहचानते हैं। हाँ बमा यजहदु बिआयातिना इल्लज़्ज़ालिमून, मगर हमारी आयतों का इनकार तो वही करते हैं जो जालिम है। पहली खूबी क्या थी कुरान की आयतों का इनकार करने वालों की? काफिरून। दूसरी खूबी क्या आ गई? जालिमून। नोट करते जाए, कुरान का इनकार या तो काफिर करेगा या जालिम करेगा। आज भी आप देखिए कि जब भी कुरान की दावत कहीं आम होगी, इन दो में से कोई एक सूरत जरूर होगी, या तो वो पक्का मुनकर है, तो या फिर वो अपने नफ्स पे जुल्म कर रहा है, या तो शिर्क करके या दुनियादारियों में पड़ के। उसको फिर ये बातें समझ ही नहीं आती। और इस आयत से ये भी पता चलता है फी सुदूरिन से कि कुरान मजीद हाफिजों के सीनों में मौजूद है। ये कुरान का एजाज है, लफ्ज ब लफ्ज सीने में महफूज होता है। एक बार ऐसा गुजरा कि जालिम बादशाह ने कहा कि मुसलमानों की सारी किताबों को जला दो, हम इनका दीन खत्म करते हैं। जाके जो हरकारे थे उन्होंने कोशिश की, काजी सारे कुरान जला दिए। एक दिन बादशाह कहीं से गुजरा तो उसको फिर कुरान पढ़ने की आवाज आई। अपने फौजियों पे या अपने कारिंदों पे बड़ा नाराज हुआ कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला। तो उन्होंने कहा, नहीं बादशाह सलामत, हमने सारे नुस्खे जला दिए। कहा, फिर वो क्यों पढ़ रहे? कहा, आपने तो हमें कागज के नुस्खे जलाने का, वो जला दिए। ये कुरान तो इस उम्मत के सीनों में, इनको कैसे जलाएं? आपको पता है कि अल्लाह के नबी के दौर में धोखे से लोगों ने रजी के मुकाम पर 70 हुफाज को बुलाया और खत्म कर दिया, तो गम आ गया। इसी तरह के वाक़ अल्लाह के नबी के बाद हुए, जिसके बाद इस कुरान को पाइल अप करने का शौक बढ़ा कि हम इसको कैसे रखें, अगर सारे ही लोग मार दिए गए कुछ होगा तो इसको रिटर्न फॉर्म में तो रखें। तो ये तो सीनों में, इतना सा बच्चा इसको हिस कर लेता है। टाइम होता तो आपको कई वीडियोस दिखा सकती थी, छोटे छोटे बच्चे इस कुरान को पढ़ते हैं। दुनिया की कोई किताब ये कर ही नहीं सकती, किसी का ये इजाज़ ही नहीं है। आप खुद अपने बोले हुए लफ्ज़ दोबारा बोलना चाहें तो आप नहीं बोल सकते, कहाँ फिर अल्लाह का ये कलाम है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो, इस किताब को तो हमने सीनों में रख दिया, फिर भी नहीं मानते, इनका नसीब है। और आप खुद भी देखें कि आपको जितनी जल्दी कुरान की आयत याद हो जाती है, इतनी जल्दी आपको दूसरी चीजें नहीं याद होती। शेर नहीं याद होते, कुरान की आयत याद हो जाती है। जितना आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है, अल्लाह ताला उतना ही फायदा देते हैं। लेकिन इन जालिमों ने क्या किया? बहाने क्या थे? आयत 50, वकालू, और वो बोले लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिन रब्बिही, और वो कहते हैं क्यों नहीं नासिल की गई इन पर निशानियां इनके रब की तरफ से। यानी मक्का वाले हर दिन ये मुतालबे करते हैं कि अगर आप नबी हैं तो आपको कोई मौजज़े क्यों नहीं दिए जाते, या आयत उनके नीचे लिख लीजिए मौजज़े। मौजज़े चाहते हैं, मिरेकल्स चाहते हैं, तो कुरान कहता है कि कुल इन्नमल आयात इंदल्ला, आप इनको कह दीजिए कि निशानियां नाजिल करने के इख्तियार तो अल्लाह के पास है। अल्लाह के नबी अपने ऊपर ये जिम्मा नहीं ले रहे कि मैं अपनी मर्जी से मौजज़ा ले आऊंगा। आज लोग मौजज़ों की बातें, 10 बीबियों के मौजज़े और कहानियां और बुजुर्गों के मौजज़े पेश करते हैं, अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है इनको कह दो मौजज़े मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वह इन्नमा अन नज़ीर मुबीन, मैं तो सिर्फ वाज़े कर देने वाला, खबरदार करने वाला हूं। क्या बता दिया कि तुम जो मुतालबे मुझसे करते हो, सॉरी मैं ये मुतालबे पूरे नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हें वो चीजें करके दिखा दूं कि जो मेरे इख्तियार में नहीं है। देखिए, इससे भी ज्यादा कोई अल्लाह के नबी के मुकाम को सही तरह वाजे कर सकता है जितना वाजे ये कुरान हमें करता है, इस वजह से कि हम इस किताब का हक अदा करें। अल्लाह के नबी के बारे में जब हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं तो हमारे दीन की बुनियादें ठीक हो जाती हैं। तो बात वाज़े है, सारी बातों का खुलासा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो गैब नहीं जानते थे, अल्लाह उनको जितना देता था, जब देता था, तब ही चीज़ उनको मिलती थी, और आप अपनी मर्जी से ये चीज़ें नहीं ला सकते थे। लेकिन इसके बाद लोगों का आपके साथ मामला क्या था, अल्लाह ताला उस मामले पर अब एक अपनी तरफ से कमेंट देते हैं, अवलम यकफीहिम, क्या उनके लिए ये काफी नहीं था, क्या अन्नानजलना अलैकल किताबा, कि बेशक हमने नाजिल की किताब आपके ऊपर, युतला अलैहिम, जो इनको पढ़कर सुनाई जाती है। अब देखिए लफ्ज युतला की जो पेश है ना, ये इसको मजहूल कर रही है, पैसिव वॉइस, यतला युतलू युतला, ये सब की प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, यानी युतला अलैहिम का ये नहीं मतलब कि वो पढ़ते हैं, बल्कि इन पर पढ़ के सुनाई जाती, जैसे मैं बोल रही हूं तो आप सुन रहे हैं, ये युतला है, ठीक है। अगर मैं कहूंगी मैं पढ़ रही हूं तो ये युतला नहीं होगा, तो गोया के कहा ये आयतें जिनको पढ़ के सुनाई जाती हैं, क्या इनको कुरान जैसा अज़ीमो शान मौजज़ा नजर नहीं आता। बार बार चैलेंज, 4 दफा पूरे कुरान में चैलेंज है, एक सूरत बना लो, 10 सूरतें बना लो, इस किताब जैसी ले आओ, तो ये तो नहीं कर सके। तो फिर क्यों नहीं मान जाते कि इन फी ज़ालिकल रहमा, बेशक इसमें रहमत और याद दहानी है, व ज़िक्रा लिक़ौमी युमिनून, और इसमें याद दहानी भी है उस कौम के लिए जो ईमान लाती है। ये है इस किताब की खूबसूरती। और तारुफ देखिए, ज़िक्र, रिमाइंडर, शुरू में सूरत के जो बात हो रही थी ना ज़िक्र, उसको यहाँ सामने ले आई है। ये किताब रिमाइंड करवाती है कि भूली बातें याद करवाती है, ये किताब रिमाइंडर है, और क्या इस किताब का आप नाम रखेंगे। याद रखिए, जब उत्लुमाउहिया का हक अदा होता है ना, तो फिर उसके बाद ये किताब हकीकत में हमारे लिए एक जिक्रा बन जाती है। हर पारे में तकरीबन एक दफा जिक्रा का लफ्ज आ रहा है। एक होता है जिक्र करने वाली जाकिरा, वो सिंपल लफ्ज था, उससे बहुत बढ़ गया दर्जा जिक्रा, रिमाइंडर है। जैसे आपने रिमाइंडिंग नोट्स लगाए होते हैं, कभी अपने फोन्स में अलार्म लगाते हैं, रिमाइंडिंग लिस्ट है, कभी फ्रिज के ऊपर लिख के लगाया होता है, कैलेंडर पर डेट्स डाली होती हैं, इस दिन इधर अपॉइंटमेंट है, इधर अपॉइंटमेंट है, ये कुरान तुम्हारे लिए एक रिमाइंडिंग थिंग है, क्या कि तुमने उसकी तरफ जाना है। तो लिहाजा कुल कफा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा, ए नबी आप कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह के तौर पे काफी है, मुझे तुम्हारी गवाहियां नहीं चाहिए, तुम मेरी तारीफें ना करो, तुम मुझे वेरीफाई ना करो, आई डोंट माइंड, क्योंकि रब गवाह है इस बात पर कि मैं उसका नबी हूं, उसने मुझे रसूल बनाकर भेजा, और उसको पता है कि कुरान एक कितना बड़ा मौजज़ा है। कौन सा रब गवाह है, जो यालमु मा फिस समावाति वल अर्दी, जो जानता है जो कुछ आसमान और जमीन में। इतने बड़े रब की तरफ से अगर मेरी गवाही है कि इन्नी रसूलुल्लाह, तो मुझे तुम्हारी गवाहियों से क्या मतलब। देखिए, दुनिया की कोई हाई अथॉरिटी अगर किसी बंदे को वेरीफाई कर दे, तो क्या उस मुल्क के किसी छोटे से इदारे से वो वेरिफिकेशन तलब करेगा। हम सब के लिए भी इसमें सबक है, अल्लाह की नजरों में सच्चे बन जाइए, दूसरों की फिक्र ना करें। अल्लाह ताला ने जो चीज तुम्हारे लिए रखी है उसको ले लो, अल्लाह के ऊपर नजरें लगा लो, छोटे छोटे लोगों से अपनी नजरें हटा दो। इसके बरक्स वल्लज़ीन आमनू बिल बातिली व कफरू बिल्ला, अल्लाह ना करे हम इनमें हो, वो लोग जो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह का कुफर करते हैं। तौबा करें कि अल्लाह हमें इनमें ना कर दे। उलाइका हुमुल खासिरून, यकीनन ये खसारा पाने वाले। अभी तक जितनी भी आयतें हुई हैं 45 से 52 तक, आपको एक ही बात की लफ्ज की शिद्दत दिख रही है, क्या टॉपिक है अभी तक? वही दो लफ्ज जो शुरू में चले, उतलु मा ओहिया इलैका मिनल किताब और अकीम सलात। असल अंदर की इसलाह की जरूरत है। अक्सर मैं खुद भी सोचती हूँ कि तब्दीली कब आती है, जब अंदर की इसलाह होती है। वल्लाही अंदर बदले बगैर बात नहीं बनती। ये कुरान इंसान को अंदर से तोड़ता है, यकीन करें। और इसका पानी जब मुसलसल दिल पे पड़ता है ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि अंदर तब्दीलियां ना आए। अंदर आता है। मैं फील करती हूँ कि जितना वक्त कुरान के साथ आप गुजारते हैं, उतना आपका तज़किया ज्यादा होता है। शेयरिंग्स, बातें, दिल की बातें, अंदर के वो जैसे खुद कलामियां होती है ना इस कुरान के साथ, तो ये कुरान जब दिल पे उतरता है ना, इसका असर होता है। अगर आपको भी अभी फील हो रहा है ना, 21वें पारे पे आ गई हूं, ऐसे ही बैठी रहती हूँ क्लास में बस, नो कोई रोना नहीं, कोई हंसी नहीं, तो वल्लाह ही जाके दिल का टेस्ट करवाएं। कोई वैक्स तो जरूर लगी हुई है दिल पे, कोई चीज है जो मेरी तवज्जो ले रही है। इस क्लास में बैठ के कोई और चीज याद आ जाए, शिर्क है। कोई गम याद आ जाए, कोई खुशी याद आ जाए, कोई अंदेशा, कोई फिक्र, नेवर एंड नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल। यकीन करें, अगर जब कुरान को दिल से पढ़े होते हैं ना, अगर वक्त का, छुट्टी का, साथियों का गम और नमाजों का आगा पीछे ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक आयत पढ़ते हुए भी अगली आयत पे कोई पढ़ाने लग जा सके। कई दफा ऐसा होता है कि अपनी रवानी में बोलते हुए नजर पड़ती है घड़ी पे, तो एकदम ब्रेक लगता है कि बस खत्म, आगे चलो, सबक पूरा करना है। ऐसे लगता है कि आप एक कुएं में से पानी ले रहे हैं, ले रहे हैं। मुझे तो हर दिन यही लगता है कि ये मेरे दिल पे उतर रहा है। मुझे ऐसे फील होता है कि ये आयतें जो है ना, ये सिर्फ मेरे से बात करती है, और मैं जब बोलती हूँ तो मैं बात बस सिर्फ खुद से बोल रही होती हूँ। आपके सामने बैठी हूँ, आप भी सुन रहे होते हैं, और आपको लग रहा होगा, आपको सुना रही हूँ, लेकिन मुझे साफ लग रहा होता है कि कभी मैं ऐसी बात ना मुंह से निकाल दूँ जो मेरी अल्लाह की राज की बात हो, और आपको भी मैं सुना दूँ ऐसे कि मुझे पता ही नहीं चला मैंने अपने दिल की बातें कर दी। ये किताब इतना गहरा असर रखती है, लेकिन वो लोग जो नहीं मानते, वो नहीं मानते तो लाइक हुमुल खासिरून। आपने इस आयत पर गौर किया, वल्लज़ीन आमनू के फौरन बाद क्या आता है? वल्लज़ीन आमनू बिल्लाह, यही आएगा ना। यहाँ क्या, ये कौन सा ईमान है? क्या ये ईमान मतलूब है? अल्लाह में कभी किसी को ये ईमान नसीब ना करे कि जो ईमान बिल बातिल है। देखिए, एक होता है ईमान बिल्लाह और एक होता है ईमान बिल बातिल। ये बातिल पर ईमान ही है जो हमें ईमान बिल्ला से रोके हुए हैं। आज सांस रुके हमारा, तुम्हारी सब बिलोंगिंग्स हमारा विरसा बन जाएंगी। जो हैव्स हैं वो हैव नॉट्स में बदल जाएंगे। लेकिन ये बातिल हमारे फिर पांव पकड़ता है, फिर ये बातिल हमें सारे दुख याद कराता है क्लास में, सारे प्लान, सारे ख्वाब। कहा कि 3 मौके पे अपने दिल का जायजा लो, और अगर अपने दिल को हाजिर ना पाओ तो वल्ला ही तुम्हारा दिल बीमार है। जाओ चेक करो किधर है दिल। और उसमें से एक मौका कुरान के पढ़ने का मौका है, तन्हाई का वक्त, नमाजों का वक्त। अपने आप को इस तरह डुबोएं इसके अंदर कि आपको किसी चीज की होश ना हो। और याद रखिए कि जितना बंदे का दिल सख्त होता है ना, उतना बंदा कहता है अच्छा देखते हैं क्या होती है जी, हम पे मुसीबत क्या आती है, दिखाओ भला क्या मुश्किल आती है कुरान छोड़कर। ए नबी, हम तुम्हें नहीं मानते तो क्या अजाब आएगा? ऐसी बातें आके कहते थे। ओ मोहम्मद, वो किधर है अजाब जिसकी बातें तू कर रहा है? तो अल्लाह ताला अगली आयत में कहते हैं, आयत 53 में, वयस्ताजिलून कबील अजाब, और ये लोग जल्दी तलब करते हैं आपसे अजाब को, मजाक करते हैं, इनको मस्तियां सोचती हैं, खर मस्तियां करते हैं कि लाओ भाई जल्दी जल्दी अजाब लाओ। अजाब है या खाना है? अजाब है या कोई खैर है? वला जलो मुसम्मा, और अगर एक वक्त पहले से मुकर्रर ना हो चुका होता, किस चीज का? अजाब का। तो फरमाया ला जाहुमुल अजाब, तो जरूर आ चुका होता इन पर अजाब। अल्लाह के पास अपॉइंटमेंट बुक है, अल्लाह चेंज नहीं करता लोगों के कहने से और ये कहने से कि अभी हम तैयार नहीं, तो रोक ले ना, रोकते ना वक्त से पहले लाता है। हाँ जब आएगा, वाला यातियन्नहुम बख्ततन, और वो इन पर अचानक आ जाएगा। वहुम ला यशउरून, और उनको शऊर भी नहीं होगा। फिर ऐसी मुसीबत आती है कि ऐसे लगता है या कहाँ से गई बला। कितना सिलसिला जिंदगी का सूदिन चल रहा होता है, पुरसकून। आपको पता कि आफियत सबसे बड़ी दौलत है। आज सेहत भी है, दौलत भी है, जवानी भी है, औलाद भी है, शौहर भी है, कोई रोजी रोटी की फिक्र नहीं। अचानक कोई एक हालात की गर्दिश आती है, بغتتن وہم لا یشعرون. صحت مندی بیماری میں بدلتی, بستر پہ لیٹے پہ روتے کیا کریں. کوئی گاڑی آ رہی تھی, روز چل رہی تھی, خراب ہو کے کھڑی ہو گئی, لا یشعرون, پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کی پکڑ ہوتی ہے, آزمائش بھی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا. دوبارہ دیکھیے, یستعجلون قبل عذاب, یہ لوگ عذاب کے لیے جلدیاں مچا رہے ہیں. دوبارہ لطیف انداز ہے, ایک ہی بات کو پہلے بھی اور دوبارہ کر کے اب آگے کیا کہہ دیا. پہلے ان کی دنیا کی حالت بتائی تھی کہ دنیا میں عذاب آئے گا, اب آخرت کے عذاب کی بات کر دی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, حالانکہ جہنم ان کافروں کا گھراؤ کر چکی ہے. جہنم کیسے کافروں کو دیکھتی ہے؟ دیکھیے, جہنم کی آگ ایک غیر مرئی چیز ہے نا, آپ آنکھوں سے ابھی تو نہیں دیکھ سکتے, ہمیں نہیں نظر آ رہی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم نے ان کو گھیرا ہوا ہے. جیسے کسی مخالف فوج کا تصور لائیے, کسی شہر کی دیواروں کے چاروں طرف سے وہ حصار باندھ لیں اور اندر رہنے والوں کو بھی خبر ہی نہیں, ایک دم جب باہر نکلنا چاہیں گے پتہ چلے گا جی گھرا ہو گیا. جہنم میں جانے والے کام ان کے لیے جہنم کا گھیراؤ بن گئے, اب وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے.